ప్రమోదః. మానం తనోతి సహగో గణయోస్తయోర్యత్ పానీయ సూయవసకందర కందమూలై హంతాయ మద్రిరబలా హరిదాస వర్యో యద్ రామ కృష్ణ చరణ స్పర్శ ప్రమోదః మానం తనోతి సహగో గణయోస్తయోర్య పానీయ సూయవసకందర కందమూలై హంతాయ మద్రిరబలా హరిదాస వర్యో యద్ రామ కృష్ణ చరణ స్పర్శ ప్రమోదః మానం తనోతి సహగో గణయోస్తయోర్య పానీయ సూయవసకందర కందమూలై हन्त ओ अयम यह अद्री पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौवों बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं में वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां जाग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधुर जगतपते गोवेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सारे भक्तों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन बंद करके रख दीजिए या उसको स्विच ऑन साइलेंट मोड पर रख दीजिए। जो भी माताओं के छोटे बच्चे उनसे अनुरोध है, आप बाहर सुन सकते हैं FM पे बच्चों को लेके। और ये जो लेक्चर है ये फेसबुक पेज जो है श्री श्री राधा मदन गोपाल वेबसाइट के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन धारण किए और हमारे आचार्यों ने इनके ऊपर अनेक टीकाएं लिखी हैं। हम तीसरी शिक्षा पर है। गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने गोवर्धन धारण किया। भगवान श्री कृष्ण के नजरों में पूजनीय कौन हो सकता है? यहाँ पर भगवान ने गोवर्धन को पूजनीय माना है इन दो कारणों के वजह से। गोवर्धन कोऑपरेट्स विद द प्लान ऑफ कृष्णा। गोवर्धन लिव्स टू सेल्फलेसली सर्व अदर्स। नीति शास्त्र में दुर्जन और सज्जन इसकी परिभाषा दी गई है कि दुर्जन व्यक्ति कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, और सज्जन व्यक्ति कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। तो दुर्जन वो है जो इस समाज से अधिक लेता है और कम देता है। वन हु टेक्स मोर एंड गिव्स लेस इज अ दुर्जन। और ठीक विपरीत सज्जन व्यक्ति है जो इस समाज से कम लेता है और ज्यादा से ज्यादा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के वृक्षों का गुणगान किया। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। सदा, सदा का अर्थ है हमेशा। हमेशा एक उच्च दर्जे का जो व्यक्ति है उसके आचरण किस प्रकार से होने चाहिए। श्रेय आचरणम सदा, वो व्यक्ति पूजनीय है, वो व्यक्ति आदरणीय है, वो सज्जन है जो कि प्राणैर अर्थैर धिया वाचा, ये सारी चीजें अपना स्वयं के प्राण, अपनी बुद्धि, जो भी धन संपत्ति है उसकी इत्यादि, ये सब को वो जब दूसरों की मदद करने के लिए लगाता है, दूसरों की सहायता हेतु, श्रेय आचरणम सदा। और वो कहते हैं भगवान कि सभी देहधारियों को ऐसे आचरण करने चाहिए। और किसे दिखाते हुए भगवान? वृक्षों को दिखाते हुए। ये वृक्ष देखिए, ये वृक्ष स्वयं के लिए जल मांगते तक नहीं है। यदि कोई दे दे तो ठीक है, ना दे तो भी ठीक है। और कोई जल देता है कोई जल नहीं देता, वो भेदभाव नहीं रखते, वो सभी को समान रूप से वृक्ष जो हैं वो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपनी छांव देते हैं, वो अपने 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 स्वयं का शरीर दे देते हैं पक्षियों को उनका घर बनाने के लिए, पत्ते फल फूल वलकल इत्यादि सब कुछ प्रदान करता है ये वृक्ष। यहां तक कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो इस वृक्ष को काटने भी आता है और हाथ में कुल्हाड़ी लिए जब वृक्ष को काटता है, कई बार वृक्ष इतने विशाल होते हैं कि ये लकड़हारा ये काटते काटते जब थक जाता है तो बीच में उसी वृक्ष की छांव में वो आराम करता है जिस वृक्ष को वो काट रहा है। सर्दी में ये वृक्ष जो है ये अपनी लकड़ी प्रदान करते हैं ताकि जो इसे काटे हैं वो सर्दियों में अपने आप को गर्म कर सके। तो भगवान ने वृक्षों का उदाहरण दिया इसलिए क्योंकि इसके पश्चात यहां पर गोवर्धन पर्वत का उदाहरण दे रहे हैं, वृक्षों का उदाहरण दिया, उसके पश्चात वो यज्ञ पत्नी के जो पति थे, याज्ञिक पत्नियों के जो पति थे, उनके विषय में बताना चाह रहे थे कि इनके समक्ष मेरे स्वयं के निजी ग्वाल सखा गए मांगने के लिए मेरे लिए और बलराम जी के लिए, परंतु ये दिए नहीं। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, परंतु ये कुछ भोग की सामग्री दे न सके, किसके लिए, जो यज्ञेश्वर हैं, इनसे भले तो ये वृक्ष, ये गोवर्धन पर्वत। इसलिए हाल ही में मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, अच्छा व्यक्ति कौन है। अक्सर कलयुग में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, तो अच्छा व्यक्ति कौन है। तो हमने जवाब में कहा, देखिए दो चीजें हैं, एक है आप किसी से अच्छा बनो और एक है आप किसी का अच्छा करो। तो अच्छा व्यक्ति कौन है, वो नहीं जो केवल किसी से अच्छा बनना चाहता है, बल्कि अच्छा व्यक्ति वो है जो किसी का अच्छा करना चाहता है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हुए जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने क्या कहा, डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी ये कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे कमांडर, वो हमें एक बार ये प्रश्न पूछे, ट्रेनिंग के पश्चात ये प्रश्न पूछा गया था हमसे, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि तुम सारे वायु सैनिक अब यहां से ट्रेनिंग पूर्ण करने के पश्चात अब परमानेंट सर्विस ज्वाइन करने वाले हो, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर हु इज आल्सो अर्निंग एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज आल्सो अर्निंग मनी, क्या अंतर है। दोनों पैसे कमा रहे हैं, तो हम भी सोचने लगे कि क्या अंतर हो सकता है। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा अंतर है कि यदि एक सैनिक को उसकी तनख्वाह दी जा रही है, सरकार दे रही है तनख्वाह कुछ हजार रुपए, परंतु उसके बदले में वो सैनिक उस सरकार को और उस देश को क्या देता है? अपने प्राण। तो हमारे कमांडर ने हमको पूछा, बताओ कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पर यह सौदा किया जाए कि हम तुमको 50,000 तनख्वाह देंगे, बदले में तुम्हारी जान लिखित रूप में दे दो, तुम्हारी जान चाहिए। वो बात अलग है, जीते जी मार देते हैं। तो इसलिए किसी से अच्छा बनना और किसी का अच्छा करना, अच्छे की पहचान क्या है। इसलिए कई हिंदी के शब्द हैं, आप यदि इन हिंदी के शब्दों पर गौर करो तो बस थोड़ा सा फेरबदल करने से उनके जो अर्थ हैं उसमें एक समन्वय सामंजस्य दिखता है। जैसे कि जब आप किसी का भला करने जाओ तो उसका उल्टा, उसे यदि उल्टे तरीके से लिखा जाए तो क्या होगा? लाभ। एक और शब्द है, जब किसी पर दया करोगे तो याद रखे जाओगे, नहीं तो इतिहास के पन्नों में भी कहीं नाम दर्ज नहीं होगा। एक सुंदर कथा है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के बीच, ये युद्ध के पश्चात की कथा है। तो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण वो टहल रहे थे और पूर्व की बातें करते हुए, अब हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो चुका है, तो एक ब्राह्मण ने देखा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पार्थ सारथी सुसज्जित चल रहे हैं, टहल रहे हैं इत्मीनान से। तो ये भिक्षुक की भूमिका निभाते हुए अर्जुन से कुछ भिक्षा मांगता है। अर्जुन तुरंत उनके पास एक थैली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं होती है इस ब्राह्मण को दे देते हैं। उसी दिन ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्जुन से प्राप्त, ये ब्राह्मण जैसे ही घर लौट रहा था एक चोर चुरा ले जाता है। दूसरे दिन फिर ये ब्राह्मण देखता है अर्जुन और भगवान को टहलते हुए, तो अर्जुन के समक्ष जाता है, कहता है कि कल जो आपने वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझे दी थी चोर ने चुरा ली। तो अर्जुन ने अपने मुकुट से एक हीरा जो जड़ा हुआ था वो निकाला और ये बेशकीमती बहुमूल्य हीरा ये ले लो, ये दे दिया उसे। तो अब इसने सोचा कि मैं इसे छिपा के रखूंगा, कहीं फिर से ये चोरी ना हो जाए। तो अपने घर गया, उसने खाली मटका देखा, खाली मटके के अंदर वो बेशकीमती हीरा छिपा दिया। कुछ दिन नहीं हुआ, हीरा वहीं का वहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह के समय उसकी पत्नी पानी भरने के लिए मटका ढूंढ रही थी, तो ये खाली मटका पत्नी को पता नहीं इसके अंदर ये हीरा है, तो मटका उठाकर ले गई पानी भरने के लिए नदी में। और जैसे ही नदी में मटका डाला तो पानी जो भर रहा था मटके में, उसके वजह से वो हीरा नदी में गिर गया, पत्नी को पता भी नहीं चला। ये ढूंढते हुए मटका कहाँ गया, मटका गायब, हीरा गायब, पत्नी को पूछता है, पत्नी ने कहा बता दिया करो। एक लेसन क्या है, बता देना चाहिए। तो बता दिया होता, अब यहां पर हुआ क्या, इस नदी में ये जो बेशकीमती हीरा अर्जुन ने इस ब्राह्मण को दिया था, ब्राह्मण ने मटके में छिपाया था, पत्नी मटका नदी में पानी भरने के लिए ले गई, वहां से वो नदी में बहता हुआ नीचे गिर रहा है, एक मछली ने उस हीरे को निगल लिया। यह ब्राह्मण तीसरे दिन फिर अर्जुन और भगवान को देखता है टहलते हुए। ब्राह्मण कहता है पता नहीं मेरा क्या नसीब है, वो हीरा जो आपने दिया था वो भी मेरे हाथ से जाता रहा। तो अर्जुन ने कहा सही कह रहे हो तुम, तेरे भाग्य में नहीं है, तेरे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है शायद। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, मैं इसे कुछ देता हूं। तो भगवान ने इस ब्राह्मण को दो तांबे के सिक्के दिए। तो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि मैंने तो इसे स्वर्ण मुद्राएं दी, मैंने इसे हीरा दिया, इसके भाग्य में वो नहीं टिक पाया, ये दो तांबे के सिक्के लेकर कौन सा ये धन संपन्न हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा मैं जो भी कुछ करता हूं तुमने आज दिन तक देखा है, वो सही निकलता है या गलत निकलता है, गीता किसने सुनाई। तो अर्जुन अब ये एक पहेली अर्जुन के सामने कि भगवान ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का कारण क्या था, क्या होगा पता चलना चाहिए, अर्जुन पता जानने के लिए बहुत उत्सुक था। तो हुआ क्या कि ये ब्राह्मण ने देखा कि ये दो तांबे के सिक्के क्या काम आएंगे, तो उसने उसमें से एक सिक्का मछुआरे को दे दिया। तो जैसे ही मछुआरे को दिया तो मछुआरे उसके लिए ये सिक्का बहुत कीमती था, उसके पास कुछ भी नहीं था मछलियों के अलावा, तो उसके लिए बहुत कीमती साबित हुआ। तो उसने बदले में एक मछली निकाल कर दे दी, कौन सी वाली दी उसे नहीं पता, वही मछली जिसके गले में वो हीरा अटका हुआ, और वो मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण ने देखा अरे भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्या मछली खाऊंगा, परंतु हाथ में थमा दी। जैसे ही हाथ में थमाई वो मछली तड़पते हुए पानी निकला उसके मुंह से और वो हीरा भी बाहर उगल दिया उस मछली ने। जैसे ही इसने वो हीरा देखा, इस ब्राह्मण ने, उसे वो हीरा याद आ गया, यही तो वो हीरा था अर्जुन ने दिया था, और चिल्लाने लगा कि मुझे मेरी धन संपत्ति प्राप्त हो गई। ऐसे जब वो चिल्ला रहा था तो जिस चोर ने वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली चुराई थी उसने सुन लिया और वो डर गया, क्योंकि उसने कहीं छुपा के रखी थी, उसने सोचा कि इसे पता चल गया। तो वो थैली जहां पर उसने छुपा कर रखी थी वो निकालकर ब्राह्मण को लाकर दे देता है। ब्राह्मण दौड़ते हुए अर्जुन के पास जाता है, भगवान कृष्ण के पास जाता है, कहता है कि जो वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली और हीरा जो मैं गंवा चुका था फिर से मुझे मिल गया, जैसे था वैसा मिल गया। तो अर्जुन तुरंत देखे भगवान की ओर और पूछे भगवान से कि ये करिश्मा कैसे हुआ, तांबे के दो सिक्के। तो भगवान ने कहा अर्जुन जब तुमने इसे दान दिया था तो इसकी वृत्ति क्या थी, मैं भोगूंगा इसे। जब इसे दान मिला तुमसे तो इसकी वृत्ति थी कि मैं भोगूंगा, जब मैंने इसे दो तांबे के सिक्के दिए तो तुरंत इसकी वृत्ति हुई कि मैं ये किसी को दान में दे दूंगा। जैसे ही उसकी वो वृत्ति हुई देने की, जब देने की वृत्ति होती है तो उसकी भी देने की वृत्ति होती है। जब हमारी वृत्ति केवल लेना 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 तो फिर भगवान भी हमसे वही आदान प्रदान करते हैं, और जब वो लेना शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई यदि भगवान श्री मदन गोपाल जी देना चाहें तो हम ये दो हाथों से कितना ले पाएंगे, और यदि वो छीनना चाहें तो हमारे दो हाथों से हम कितना पकड़ पाएंगे अपने लिए। तो सुदामा ने थोड़े से पोहा वो दिया, और उसके बदले में भगवान ने, क्योंकि देने की वृत्ति थी तो भगवान ने भी अपने हिसाब से दिया। तो इसलिए अच्छा इंसान वही है जो किसी का अच्छा करना चाहता है। तो हम भरत चरितामृत पर हैं। प्रसंग है वनगमन लीला, जहां पर अब सीताराम लक्ष्मण सुमंथरा के साथ वो अयोध्या की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं, और लक्ष्मण अब याद कर रहे हैं उस रात्रि को, जिस रात्रि पहली की जो रात्रि जब सीताराम वो विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने सुमित्रा अपनी मां के विषय में सोचा। सुमित्रा ने जो आदर्श मां का उदाहरण प्रस्थापित किया है, इन द नेम ऑफ लव डोंट जस्टिफाई फॉरसेकिंग वंस ड्यूटी, पूर्ण आशीर्वाद। और एक बात सुमित्रा ने लक्ष्मण से कही, बहुत विशेष बात है, फिर सुमित्रा जैसी जो मां होती है ऐसी बातों के द्वारा वो हृदय को द्रवित कर देती हैं। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि 14 वर्ष तुम जा रहे हो रामचंद्र जी और सीता की सेवा करने के लिए, एक बात का ध्यान रखना कि रामचंद्र जी के मुखमंडल को मत देखना, सेवा करते समय उनके मुखमंडल को मत देखना, क्योंकि उनका मुखमंडल इतना ज्यादा लुभावना है कि एक दफा तुम उनके मुखमंडल को देख लोगे तो सेवा भूल जाओगे, और टकटकी लगाए केवल निहारते रहोगे उनकी सुंदरता को, और उनको निहारना मतलब तुम स्वयं के आनंद के लिए वो क्षण बिताओगे। और मैंने तुम्हें जाया है क्यों? इसलिए नहीं कि तुम अपने भोग के लिए क्षण बिताओ उनके साथ, बल्कि उनके आनंद के लिए, उनकी सेवा के लिए। सुमित्रा और राम, जिनके विषय में हमने हमारे पिछले सत्रों में सुना कि इन दोनों को अयोध्या नगरी का ये जो राजसी परिवार दशरथ महाराज का, उसमें बैलेंसर्स बताया गया है, कि जैसे राम वो बैलेंस करते थे कौशल्या, और सुमित्रा वो बैलेंस करती थी लक्ष्मण को। तो आप देखो, इस संसार में भगवान ने प्रकृति भी इस प्रकार से बनाई है, हमारा शरीर भी इस प्रकार से बनाया है, जो कि हर तरीके से उसके अंदर बैलेंसर्स होते हैं। जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार जो त्रिताप हैं, दोष त्रिदोष जो हैं, वो बैलेंस्ड होने, उनके अंदर जब इम्बैलेंस आता है तो व्यक्ति रोगी बन जाता है। स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? कि वो जो कफवात पित्त है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। पाव भाजी, तो उसमें भाजी तीखी है, पाव फीकी है ना। यदि पाव भी तीखी होती भाजी के समान तो वो बैलेंस नहीं होता। वो ज्यादातर ये एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आता है हमको। तो पाव भाजी, मटर पनीर, आलू गोभी, ये सब बैलेंस करने के लिए। वैसे ही परिवार के अंदर यदि एक भाजी है तो एक को पाव होना चाहिए, एक मटर है तो एक को पनीर होना चाहिए, एक आलू है तो एक को गोभी होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए। अगर दोनों भाजी हैं तो फिर वहां पर केवल लावा ही लावा दिखाई देगा सब जगह पर। तो हमने कुछ उदाहरण लिए बैलेंसर्स के, ध्रुव महाराज के जीवन में सुरुचि और सुनीति ये कैसे बैलेंसर्स हुए, सुनीति ने कैसे बैलेंस किया ध्रुव महाराज के जीवन को। तत्पश्चात हमने उदाहरण लिया माता सती, उनके जीवन में एक तरफ थे उनके स्वयं के पिता, दूसरी तरफ उनके पति दक्ष और शिवजी। और श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कैसे शिवजी ने बैलेंस किया अपने स्वयं के ससुर और अपनी पत्नी के बीच। और हमने अंतिम उदाहरण लिया अर्जुन का, युधिष्ठिर और भीम को कैसे अर्जुन बैलेंस किया करते थे। युधिष्ठिर वुड बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, भीमा वुड बी करेक्टिंग एंड पनिशिंग। तो उर्मिला, इनसे हमने पिछले दफा शिक्षा ग्रहण करी। समटाइम्स यू सर्व बाय एब्स्टेनिंग एंड रिफ्रेनिंग। तो उर्मिला ने निर्णय किया कि वो उनके पति लक्ष्मण के साथ नहीं जाएंगी 14 वर्ष वन में। और ये उनका योगदान था इनके वनवास में, बहुत विशेष ये योगदान। हम इसको ये योगदान बाह्य रूप से बोल भी नहीं सकते, परंतु हां आंतरिक रूप से ये एक बहुत बड़ा योगदान था उर्मिला का लक्ष्मण के वनवास के प्रति। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि हर बार मिशन में योगदान केवल आगे आ आ के कुछ करने से नहीं होता। यहां पर मिशन है राम सीता लक्ष्मण को 14 वर्ष वनवास में जाकर क्या कुछ नहीं स्थापित करना है, धर्म की स्थापना करनी है, रावण का संहार करना है। तो उर्मिला ने ये सब कुछ जानते हुए अपने आप को जानने से रोका। रामायण में ये प्रसंग हमने पहले भी सुनाया है, जब दशरथ महाराज ने पहली दफा, उन्होंने एक दिन आईने में पहली दफा जब एक सफेद बाल देखा तो वो समझ गए, एक सफेद बाल उन्होंने देखा और वो समझ गए समय आ गया है अब सेवानिवृत्ति का, रिटायरमेंट का समय आ गया। अब देखिए जो इस प्रकार के संस्कारी होते हैं वो जब सफेद बाल देखते हैं तो तुरंत वो क्या इंडिकेशन लेते हैं कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया। कलयुग में क्या करते हैं, तुरंत डाई निकालते हैं, काला कर लेते हैं उसको। तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और एक ऐसी जिसको बोल सकते हैं आपातकालीन मीटिंग, इष्ट गोष्ठी, इमरजेंसी मीटिंग सबको एकत्रित किया और सभी सोचने लगे कि क्या हुआ, क्या क्या इमरजेंसी हो गई। तो महाराज दशरथ ने जैसे ही ये विचार उनके मन में आया कि रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहिए, समय आ गया है मेरे रिटायरमेंट का और राम को राजा बनने का। तो जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया, उनके मंत्रिमंडल में, तो वहां पर उस सभा में जितने मंत्री और जितने उपमंत्री बैठे थे, उन सभियों ने दशरथ महाराज के इस निर्णय की सराहना इतनी जोर से की, दे अप्लॉडेड सो लाउड कि ऊपर स्वर्ग लोगों में उनके वो उल्लास की आवाज सुनाई दी। और दशरथ महाराज सोचने लगे कि आप लोग क्या इस ताक में थे? इतना प्रसन्न हो रहे हो, ऐसे प्रसन्न हो रहे हो, तो इतने वर्ष जो मैं इस राज सिंहासन पर बैठा राजा के रूप में, तो क्या आप लोग मुझसे खुश नहीं थे क्या? तो इसे एक लेसन क्या समझ में आता है कि यदि कोई किसी लीडरशिप पोस्ट पर है और उसे जानना है कि क्या लोग चाहते हैं उसे उस पोस्ट पर रहना, या वो जबरदस्ती बैठा हुआ है, तो एक बार अनाउंस करे कि मैं रिजाइन करने वाला हूं। यदि लोग खुश हो गए तो समझ जाना चाहिए कि तुम उसके लायक थे ही नहीं। तो दशरथ महाराज को भी ये लग रहा था कि क्या मैं जो इतने वर्षों से बैठा हुआ, क्या मैं इसके लायक था कि नहीं था। सबसे ज्यादा प्रसन्न प्रजा की जो स्त्रियां थी वो हो गई। क्यों? क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। तो दशरथ महाराज ने कितने विवाह किए थे? 353 पटरानियां थी दशरथ महाराज की। वो क्यों थी, वो एक अलग कारण है उसका, वो हमने पहले भी सुनाया एक बार। तो सोचिए 353 पटरानियां, तो राजा अगर इतनी रानियां रखे है तो प्रजा, वो कहते हैं भाई राजा ने रखा है तो हम कम से कम 3.5 तो रख सकते हैं, या फिर 3-4 तो रख सकते हैं। तो इसलिए अयोध्या में जो पुरुष थे अयोध्यावासी, वो दशरथ महाराज की नकल किया करते थे। किस मामले में? पत्नियां रखने के मामले में। और सभी जानती थी स्त्रियां कि रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत लिया है, इसलिए यदि राम राजा बनेंगे तो हमारे जो पति हैं वो सब लाइन पे ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि सबको फिर राजा की तरह, रामचंद्र जी की तरह एक पत्नी व्रत का पालन करना होगा। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई अयोध्या नगरी की स्त्रियां। तो इसलिए ये जो 12वां लेसन उर्मिला सिखाती हैं, और फिर हम उनसे एक और लेसन पिछली बार प्रारंभ किए थे सीखना, मूड मैनेजमेंट। तो उन्होंने भी अपने भावनाओं को दबा कर रखा, जैसे कि सुमित्रा ने अपने अश्रुओं को बहने नहीं दिया, वैसे उर्मिला ने भी लक्ष्मण, वो भी जानती थी कि लक्ष्मण जो हैं, मैं यदि कमजोर पड़ जाऊंगी तो लक्ष्मण मेरे पति कमजोर पड़ जाएंगे। और जो उन्होंने निर्णय अपने लिए और सीताराम की सेवा के लिए लिया है, मैं मेरे भावनाओं के वजह से बाधा उत्पन्न करूंगी। दिस इज कॉल्ड बीइंग सेंसिटिव टू द कोर, मूड मैनेजमेंट। तो पिछले दफा हमने मूड मैनेजमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लिया था, wrong expectations, to expect right things from wrong people, to expect right people to adjust with our wrongdoings. यदि कोई एक कौवे से कोयल की वाणी की अपेक्षा करता है तो मूर्ख कौन है? जो व्यक्ति अपेक्षा कर रहा है, चाहे कुत्ता कितना भी वफादार हो, आवाज जब निकालेगा, चाहे वो उसकी कोई भी भावना व्यक्त कर रहा है, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए वो एक ही तरीके से भावना व्यक्त कर सकता है, चाहे वो मालिक से प्रसन्न है या चोर से अप्रसन्न है, कुत्ता चाहे प्रसन्न है या अप्रसन्न है, केवल भौंकता है। तो मालिक सोचे कि भाई मुझसे प्रसन्न होता है तब भी तू भौंकता है, चोर से अप्रसन्न होता है उसके ऊपर भी तू भौंकता है। तो यदि कुत्ते से और कौवे से कोई मधुर गान अपेक्षित करे तो मूर्ख कौन कहलाता है? जो व्यक्ति अपेक्षा, जैसे पिछली दफा हमने वो स्टोरी सुनाई थी, बहस हुई शेर और गधे में, आकाश काला है या नीला। राजा के पास इनकी बहस पहुंच गई, राजा ने शेर से कहा इसे बंदी बनाओ, शेर को गिरफ्तार किया गया। शेर ने जब पूछा कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया, मेरी क्या गलती है, आकाश तो नीला है, मैंने तो सही कहा था, राजा ने कहा गलती तुम्हारी वो नहीं थी, गलती तुम्हारी थी तुमने गधे से बहस करी। और राजा ने एक और बात कही जो पिछली दफा हमने नहीं कही थी, इसलिए रिपीट कर रहे हैं स्टोरी। तो राजा ने उस शेर से कहा, सबसे पहले कहा गलती तुम्हारी ये नहीं थी कि तुमने आसमान को नीला कहा, गलती तुम्हारी ये थी कि तुमने गधे से बहस करी। कभी तुमने देखा है नरेंद्र मोदी केजरीवाल से बहस करते हैं? ये मॉडर्न वर्जन है स्टोरी का। एक बार एक व्यक्ति, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दगा दे दिया, तो दगा दिया उसे, इतना ही नहीं उसके एक साल पश्चात ये किसी और पुरुष से शादी कर रही है और इसके शादी का कार्ड अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड को देती है, भिजवाती है। तो अब ये कार्ड देख रहा है, अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ है, कार्ड देख रहा है, सभी इसकी ओर देख रहे हैं, क्या रिएक्शन इसका होगा? जिस गर्लफ्रेंड ने इसको दगा दिया वो किसी और से शादी कर रही है, और उसकी जरूरत कि उसने शादी का कार्ड भी भिजवाया, अर्थात इनविटेशन है ना, आओ तुम भी आओ मेरी शादी में। तो दोस्तों ने पूछा क्या करोगे तुम? इसने कहा मैं जरूर जाऊंगा शादी में और शादी का खाना भी खाऊंगा। तो सभी बड़े आश्चर्य में, तुम शादी में भी जाओगे, तुम खाना भी खाओगे? तो इसने कहा देखो, मोहब्बत और दुश्मनी अपनी जगह, मटर पनीर अपनी जगह। काफी प्रैक्टिकल था वो। तो इस भौतिक संसार में हम देखते हैं ये जो दूसरा मुद्दा है, टू एक्सपेक्ट राइट पीपल टू एडजस्ट विथ आर रॉन्ग डूइंग्स। अब इस मुद्दे को यदि हम बद्ध जीव की जो इस भौतिक संसार में यात्रा चल रही है, जिसको कहते हैं संस्मृति, संसार चक्र में पुनर्जन्म मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो उसकी यात्रा चल रही है, तो लिबरेशन क्या है? व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष अर्थात आत्मा जो कि शुद्ध है, जब वो इस शरीर या अनर्थों के साथ अपना एडजस्टमेंट तोड़ दे। अनदर डेफिनेशन ऑफ लिबरेशन इज व्हेन द प्योर सोल डिसएग्रीज टू एडजस्ट विद द मटेरियल बॉडी, लिबरेशन। व्हाट इज बॉन्डेज? व्हेन द प्योर सोल व्हिच इज राइट कीप्स ऑन एडजस्टिंग विद द रॉन्ग मटेरियल बॉडी, दैट इज बॉन्डेज। तो जितना हम हमारे इन इंद्रियों, इस भौतिक शरीर के साथ एडजस्टमेंट करते रहेंगे, उतना हम यहीं पे, जैसे कि कोई कैदी है, बहुत साल तक यदि वो कैद में है और वहीं पर वो एडजस्टमेंट शुरू कर दे, होते ना कई कैदी, उनको आजीवन कारावास मिल जाता है, तो वो लोग अपना पूरा साम्राज्य उस कैद खाने में धीरे धीरे बनाने लगते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं कि भाई यहां पर बैठकर मैं खाऊंगा ये वो सब कुछ। तो जितना ज्यादा कोई एडजस्ट करता रहता है इस भौतिक संसार में जो कि कैद खाना है, उतना ज्यादा उसको जब कोई देखता है तो क्या लगता है कि भाई इसे तो ये पसंद आने लगा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म मैंने काफी वर्षों पहले एक हमारे एयरफोर्स लाइब्रेरी की किताब में पढ़ा था, इसको बोलते हैं द स्टॉकहोम सिंड्रोम। कौन जानता है स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? तो स्टॉकहोम सिंड्रोम है जब मान लो कि कोई किडनैपर है, किसी को अगवा कर कर ले गया, वो किसके लिए? रैंसम मनी के लिए। और बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जब कोई बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति उसके किसी बेटे को अगवा कर लिया जाता है। तो जो किडनैपर होते हैं वो कुछ समय के लिए उस कैप्टिव को रखते हैं अपने पास, कब तक? जब तक कि फिरौती की रकम नहीं मिल जाती। तो कभी कभी एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कभी कभी एक हफ्ता, एक महीना, जिसको उन्हें अगवा किया है उसको छिपा कर रखते हैं। अब उसको जिंदा रखना है तो उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको सोने के लिए जगह देते हैं, लेकिन अगवा किया हुआ है इसलिए उसको छूट नहीं दी जाती, ऑलमोस्ट लाइक अरेस्ट। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सिंड्रोम बताया गया है, जिसमें वो जो समय, चाहे वो तीन दिन का हो या एक महीने या तीन महीने का हो, कि जिसको अगवा किया है किडनैपर ने, वो विक्टिम और किडनैपर में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। द विक्टिम हैज developed some affinity towards the kidnapper. तो कई बार बद्धजीव की स्थिति भी ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरह है। माया देवी ने हमको किडनैप किया है और इतने वर्षों से, इतने जन्मों से हम माया देवी के गिरफ्त में हैं, तो हमारे अंदर वो स्टॉकहोम सिंड्रोम पैदा हो जाता है. वी स्टार्ट टू डेवलप एफिनिटी टुवर्ड्स द किडनैपर. नीति में एक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि जब दोस्त